भावबोध एवं शिल्प। लस्कान के भाव सौंदर्य का उच्च संस्कृति दर्शन अथवा अध्यात्म नहीं, कृष्ण प्रेम है। उनका प्रेम चिदाकाश तक व्याप्त प्राणोन्मुख अंत सौंदर्य जैसा प्रतीत होता है। यह प्रेम इंद्रियों की आंतर अनुभूति पर आधारित है। लस्कान मध्ययुगीन भक्त कवि हैं। उनकी गहन प्रेमानुभूति ही भक्ति के मूल में है। भक्ति के शास्त्रीय पक्ष से वे दूर हैं। वे प्रतीक्षातुर प्रेमी हैं। प्रेम ही उनकी काव्य यात्रा का मूल मंत्र है। प्रिय के आगमन की उत्सुकता, प्रतीक्षा, मिलन, विछोह, सम्मोह, विमोह आदि अन्यान्य भाव रसियों से अलंकृत है लस्कान की कविता। कवि रचनाओं सुचान लस्कान, दान लीला, प्रेम वाटिका आदि पर दृष्टिपात करें तो विभिन्न भावभूमियों, राधा कृष्ण की रूप माधुरी, मुस्कान, बंक विलोचन, मिलन विछोह, नेत्रोपालंब, ब्रज प्रेम, मुरली वादन, चीरहरण, सपत्नी भाव, रासलीला, फागलीला, अलौकिकत्व, प्रेमा भक्ति आदि से प्रवाहित लस्कान की काव्य सरिता का पर्यवसान होता है उससे प्रेम सागर में, जहाँ से उसका उत्स हुआ है। प्रेम विषयक संकल्पना। लस्कान का काव्य कर्म सायास नहीं, काव्य उनके प्रेमानुभूति का भावोन्माद भावावेश का साधन मात्र है। उनकी प्रेमाभिव्यक्ति सहज और निर्मल है। वस्तुतः उनका प्रेम वासना पंख से वेदाग, निर्बध, उदात्त और अनिर्वचनीय है। वचित्त का संस्कार करने वाला, प्रेमी मन के अहम का विसर्जन करने वाला, स्त्री पुरुष की सहज प्रणयाभिव्यक्तियों का उदात्तीकृत रूप है, जिसे सात्विक प्रेम की संज्ञा दी जा सकती है। उनका प्रेम पार्थिव आलंबन के प्रति आश्रय की वासना मूलक भावाभिव्यंजना नहीं है। वह वासना मुक्त शुद्ध राग अथवा शुद्ध प्रीति है। वह सहज इंद्रिय सुख का अतिक्रमण करने वाला है। और पार्थिव आलंबन के प्रति पार्थिव आश्रय की प्रणयानुभूतियों की उदात्त अभिव्यक्ति ही लस्कान के प्रेम का बीज है। वस्तुतः सगुण साकार आलंबन के प्रति ही पार्थिव आश्रय का रतिभाव संभव है, निराकार के प्रति नहीं। यही कारण है कि सूफी संतों और सगुण भक्त कवियों ने अपार्थिव निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण साकार मानकर ही उसके प्रति प्रेम निवेदन किया है। और वास्तव में यह विशुद्ध प्रेम ही रहस्यमयी भक्ति है। यह परमात्मा के प्रति आत्मा का रतिभाव है, अतः पार्थिव जैसा प्रतीत होते हुए अपार्थिव है। लस्कान इसी अपार्थिव प्रेम के सफल चितेरे हैं। उनके राधा कृष्ण प्रेम के आलंबन हैं, प्रेम वाटिका में मलिन और माली हैं, यथा प्रेम अयन श्री राधिका, प्रेम वरण नंद नंद, प्रेम वाटिका केदो माली मालिन द्वंद। प्रेम वह परम तत्व है जिसकी अनुभूति पर अन्य सारे अनुभव निशेष हो जाते हैं, जिससे परिज्ञान पर कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। अर्थात प्रेम अनुभूति और बोध की चरम परिणति है, चरम सीमा है। जहि बिनु जाने कछु नहीं जानियो जात विशेष, से प्रेम जहि जानिके रही न जात कछु शेष। लोक में प्रेम ही प्रभु है। प्रेम अगम, अनुपम, अमित और जलद गंभीर है। वेद पुराण आदि संपूर्ण सांप्रदायिक साहित्य प्रेम के मर्म का ही व्याख्याकार है। प्रेम ज्ञान कर्म आदि से श्रेष्ठ है, क्योंकि प्रेम विहीन कर्म और ज्ञान निसार और थोथे है। लस्कान संत कवियों की भांति अपने प्रेम प्रभु को विरोध मूलक उक्तियों से रेखांकित करते हैं, जैसे कमल तंत सो छीन अरु, कठिन खड्ग की धार, अति सूधो टेढ़ो बहुरी, प्रेम पंथ अनिवार। दूसरा, प्रेम हरि को रूप है, त्यों हरि प्रेम स्वरूप, एक हुई द्वय योलसय, जो सूरज अरु धूप। लस्कान को प्रेम सांसारिक आकर्षण से मुक्त मानते हैं। अपार्थिव प्रेम गुण यौवन रूप धन ऐश्वर्य आदि के प्रति निष्काम होता है। वह प्रभु की भांति सर्वव्यापी तत्व है। जहाँ प्रेम है वहाँ प्रभु है, प्रभु प्रेमाधीन है। बिन गुण जो बन रूप धन, बिन स्वार्थ हित जान, शुद्ध कामना ते रहित प्रेम सकल रस खान, हरि के सब अधीन पय हरि प्रेम आधीन। लस्कान प्रेम में द्वैत नहीं मानते। द्वैत भाव के साथ सच्चा प्रेम नहीं हो सकता। लस्कान ईश्वर और प्रेम कृष्ण और राधा, परमात्मा और आत्मा के द्वैत की स्थिति असंकल्पित है। इसीलिए प्रेम परम मुक्ति है। प्रेम स्वयं ही अंकुर है, स्वयं भूमि, स्वयं ही सिंचन और प्रस्फुट तथा फल है। सृष्टि के सृजन का मूल कारण है प्रेम। प्रेम ही कारण है, कार्य है, कर्ता, कर्म और क्रिया स्वयं ही प्रेम है। अलौकिक प्रेम प्रभु रूप है, इसीलिए उसकी स्थिति वैविध्यपूर्ण, अलौकिक, दृश्यतीत, गुणातीत और अनिर्वचनीय तथा विलक्षण है। लस्कान ऐसे ही प्रेम प्रभु के रसिक और भक्त हैं। इस प्रेम की फांस बड़ी विदग्धकारी है। इस शूल से जो विद मरा वही सच्चे अर्थों में भी जीवित हो उठा। प्रेम प्रेम सबको कहे कठिन प्रेम की फांस, प्रेम फांस में फंसी मरे सोई जिए सदा भक्ति भाव। यद्यपि रसखान वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित और आचार्य विट्ठलनाथ के शिष्य थे, तथापि उनकी भक्ति को किसी संप्रदाय विशेष से जोड़ना अथवा भक्ति की किसी विशिष्ट शास्त्रीय पद्धति का अनुगामी मानना उचित नहीं, क्योंकि रसखान मूलतः प्रेम दीवाने हैं। प्रेम उनके इस लोक और परलोक का लक्ष्य है। वे ज्ञान कर्म उपासना पूजा से भी परे मानते हैं प्रेम को। ज्ञान कर्म और उपासना सब अहमिति को मूल, दृढ़ निश्चय नहीं होत बिन किए प्रेम अनुकूल। दंपति सुख और विषय रस पूजा निष्ठा ध्यान, इनते परे बखानिए शुद्ध प्रेम रसखान। वैष्णव भक्ति पद्धति में नवदा भक्ति को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। कहना न होगा कि नवदा भक्ति के सोपानों श्रवण कीर्तन स्मरण पद सेवा अर्चना वंदन दास्य सख्य और आत्मनिवेदन का निर्वाह रसखान काव्य में नहीं हुआ है। हिंदी में महाकवि सूर ने भक्ति में माधुर्य भाव का समावेश कर हिंदी कवियों का मार्ग प्रशस्त किया है। रसखान उसी के अनुगामी है। वे इसी माधुर्य भाव के भक्त माने जा सकते हैं। उनकी मधुरा भक्ति या प्रेमा भक्ति प्रेम और माधुर्य की रश्मियों से अलौकिक है। माधुर्य भक्ति के तीन प्रमुख अंग रूप वर्णन विरह वर्णन तथा आत्मसमर्पण रसखान काव्य में पाए जाते हैं। राधा कृष्ण की रूप राशि को उन्होंने अत्यंत सफलतापूर्वक रेखांकित किया है। कृष्ण की अन्यान्य मनोहारी छवियां सुजान रसखान में अंकित है। बांसुरी की मधुरतान छेड़ते कृष्ण, कटाक्ष पात करते कृष्ण, अलबेली वेशभूषा धारण किए कृष्ण, काजल लगाए पैजनियां पहने बाल कृष्ण आदि अनेक रूपाकृतियां रसखान ने अपने काव्य में समेटी है। कृष्ण का श्रृंगार माँ यशोदा ने किया है। उस रूप पर गोपियां बलिहारी हैं और यशोदा के भाग की सराहना करती हैं। आज गई होती भो रही हो रसखान रही कही नंद के भाव नहीं, बाको जियो जुग लाख करोर जसो मत सुख जात कहो नहीं, तेल लगाई लगाई कई अंजन भौ बनाई बनाई डिठौ नहीं, डाली झमेलन हमेल निहार निहारत बारत जो चुचकारत छौ नहीं। युवा कृष्ण का रूप ब्रज वनिताओं को विभोर करने वाला है। उनके विलक्षण रूप राशि को देखकर मुग्ध न हो, लोक लाज का परित्याग कर उनकी दीवानी न बन जाए, ऐसी कौन स्त्री ब्रज में है। उस सौंदर्य पर दृष्टि ठहरती नहीं, वह प्राणों के बिधने वाला सौंदर्य है। जैसे लोक की लाज तजी तब ही जब देखियो सखी ब्रज चंद सलोनो, खजन मीन सरोजन की छवि गंजन नयन लला दिन होनो, रसखान निहार सकै जो संहार कै तो तिय है वह रूप सुठोनो, भव कमान सौ को जब वेधत प्राण नंद कुछौनो। कृष्ण सौंदर्य का प्रभाव स्थायी और अमिट है। रूप के उस सम्मोहन से मुक्ति कहा उन्माद छा जाता है, कुछ भी होश नहीं रहता। भौ भरी सुथरी अतिशय अधरानी रंगी रंग रातो, कुंडल लोल कपोल महाछवि कुंजन ते निकसियो मुसिकातो, रसखान लखय मग छूट गयो डग भूल गई तनकी सुध सातो, ऊट गयो दधिको सिर भाजन टूटिगो नय नहीं लाज को नातो। इसी तरह राधा के सौंदर्य की अनेक छवियां उनकी विकृतियों नेत्र चित्त वन शरीर का सुडौल गठन देह यष्टि मस्तक पर टीका आदि का मनोहर शब्दावली में यथास्थान वर्णन करने में रसखान पूर्णतः सिद्धस्थ है। श्री मुख योन बखान सकय विषभान सुता जो को रूप उजारो, हे रसखान तु ज्ञान संभार तरैन निहार जो रीझन झारो, चार सिंदूर कुलाल रसाल लसय ब्रज को भाल टिकारो, गोद में मान विराजत है घनश्याम के सार कुसार कुसारो। माधुर्य भक्ति में विरह का महत्वपूर्ण स्थान है। रसखान ने विरह का मर्म स्पर्शी वर्णन किया है। वसंत के आगमन पर भ्रमरों की अनुगूंज कोयल की कूंक सुनाई देने लगती है, प्रकृति पुष्पित होने लगती है, चारों ओर मादकता का संचार है, किंतु विरहणी के कृष्ण नहीं आए, कितने कठोर हैं। फूलत फूल सवय वन बागन बोलत भौर बसंत के आवत, कोयल की किलकार सुनय सब कंत विदेशन ते सब आवत, ऐसे कठोर महारसखान जून ने कहूँ मोर ये पार न पावत, हूँ सी सालत है ही में जब बैरिन कोयल कूक सुनावत। कृष्ण विछो में मुरझाई विरहणी की देह वल्लरी, उसका निस्तेज यौवन उसका कांतिहीन मुख कृष्ण आगमन के संदेश पर इस प्रकार प्रफुल्लित प्रदीप्त और विकसित हो उठा है, जिस प्रकार दीपक की लौ उकसा देने पर सर्वत्र स्वर्णिम प्रकाश फैल जाता है। रसखान सुनाह वियोग किताप मलिन महादुति देह तिया की, पंकज सौ मुख यो मुरझाय लगी लपटे बर श्वास हिया की, ऐसे में आवत कान सुने हुड़ से सुतनी तरकी अंगिया की। यों जग ज्योति उठी तन की उकसाए दई मानो बात दिया की। मेरा वर्णन बरस खान ने कभी कभी रीतिकालीन उहात्मक पद्धति का भी सहारा लिया है। बिरहा की जो आँच लगी तन में तब जाय परी जमुना जल में। बिरह नाल ते जल सूखी गयो मछली वही छाड़ गई तल में। जब रेत फटी अरुपाताल गई तब शेष जरियो धरती तल में। रस खान तब ए आँच मिटे जब आए कश्याम लगे गल में। समग्रतः कहा जा सकता है कि रस खान काव्य में मीरा वर्णन सहज स्वाभाविक और मार्मिक है। यदा कदा अतिशोक्तिपूर्ण कथन भी है। वस्तुतः यह युग युग से प्रियतम प्रभु से बिछुड़ी प्रीति दग्ध प्रणयाकुल आत्मा रूपी रहणी की व्यथा कथा है। यह व्यथा उनके पदों में हृदय के संपूर्ण आवेग से उच्छलित है। कवि अपने आराध्य का जन्म जन्म से दास है। यही कारण है कि कवि की रूपाशक्ति प्रेमाशक्ति और तज्जन्य विरह की चरम परिणति उसके आत्मसमर्पण में होती है। प्रभु अनन्य है, कवि उनका अनन्य भक्त है। उसका सारा जीवन जन्म जन्मांतर का जीवन कृष्णमय हो। जड़ जंगम किसी भी रूप या योनि में उसे आराध्य का स्वभाव साचर मिले, यही उसकी मनोकामना है और यही प्रेम है और यही भक्ति। मानुष हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गाम की ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरु चरव नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरु करो मिलिकाल इंदी कूल कदम की धारण। अपने अनन्य भक्ति भाव के कारण रस खान कृष्ण संरक्षण में स्वयं को पूर्ण निरापद अथवा तुलसी के शब्दावली में परम विश्राम की स्थिति में पाते हैं। कहाँ करे रस खान को चुंगल लवार अथवा काहे को सोच करे रस खान कहाँ करी है रविचंद्र विचारो। जो परम दयालु कृपालु भक्त वत्सल कृष्ण परम सहायक है। ताखन जाखन रखिए माखन चाखन हरिशो राखन हारो। रस खान भी अन्य कृष्ण भक्त कवियों की भांति ही सिद्धांततः कृष्ण के निराकार निर्गुण रूप को स्वीकारते हैं, किंतु व्यवहारतः वे सगुणोपासक। भक्ति के लिए आलंबन अनिवार्य है। सूर के शब्दों में रूप रेख गुण जात जुगत बिनु निरालंब मन चक्रत धावे। सब विपदि अगम विचार ही ताते सूर सगुण लीला पद गावे। चूंकि निराकार निरालंब आराध्य के प्रति मन एकाग्र नहीं हो पाता, इसीलिए सूर की भांति रस खान भी प्रभु के सगुण रूप के ही परम भक्त है। जो इस सचराचर सृष्टि का कर्ता धर्ता और संहर्ता है, जो महान विराट और निरंजन है, वह भी अपने गुण साकार रूप में साधारण बालकों की भांति नंद जी के घर में मिट्टी खा रहा है, कैसा विलक्षण प्रभु है। कहा कहूँ आल कछु कहती बनय न दशा, नंद जी के आंगन में कौतुक एक देख्यो मैं। जगत के ठाट महापुरुष विराट जो निरंजन निराटिता ही माटी खात देख्यो मैं। कृष्ण के सगुण भक्त कवियों ने उन्हें अन्यान्य विशेषताओं से रेखांकित किया है। ये महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उनकी लीलाओं बाल लीला रासलीला फाग लीला लीला कुंज आदि के रूप में ग्रहित हैं। रस खान ने बाल लीला अर्थात कृष्ण के बचपन की अन्यान्य झांकियां प्रस्तुत की हैं। माटी खाना धूल दूषित होना चुरा कर माखन खाना विभिन्न प्रकार के आभूषण धारण करना अन्यान्य प्रकार के शरारतें करना गोपियों की तरह तरह से सताना तथा नंद यशोदा का प्रेम प्रदर्शित करना आदि इसे संबद्ध किया है। व्यापार लीला के अंतर्गत वर्णित है। जैसे दूर भरे अति शोभित श्यामजू तैसी बने सुर सुंदर चोटी खेलत खात फिरे अंगनापग पैजन बाजत पीर कछोटी। वा छवि को रस खान विलोकत भारत काम कला निधि कोटी काग के भाग पड़ी सजनी हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। कृष्ण की किशोरावस्था से संबंध रासलीला का दृश्य बड़ी सफलतापूर्वक रस खान ने प्रस्तुत किए हैं। आज भटु मुरली बटके तट नंद के सांवरे रास राच्योरी नयनन सैनन बैनन सो नहीं को मनोहर भाव बचियोरी। यद्यपि रस खान को कुल कान सवय ब्रज बालन प्राण पचियोरी तद्यपि वा रस खान के हाथ बिकान को अंत लच्यो पै लच्योरी। भाग लीला में राधा कृष्ण और गोपियों के भाग खेलने का सुंदर चित्र रस खान ने उतारे हैं। भाग उन लगते ही ब्रजमंडल में धूम मच जाती है। ऐसी कौन नव युवती है जो कृष्ण आकर्षण से विवश न हुई हो। सभी लोक लाज त्याग कर कृष्ण दीवानी हो रही हैं और सुबह से शाम तक कृष्ण के साथ फाग खेलने में तल्लीन हो रही हैं। फागुन लाग्यो सखी जब ते तब ते ब्रज मंडल धूम मच्यो है। नारी नबेली बचय नहीं एक विशेख मरय सब प्रेम आच्यो है। साँझ सकार बहिर सखान सुरंग गुलालन खेल मचियो है को सजनी निजली निलजी न भई और कौन भटू जी मान बचियो है। रसखान ने कृष्ण की कुंज लीला दान लीला चिरहरण आदि का भी मनोहारी वर्णन किया है। कुंज लीला की एक छवि दृष्टव्य है। रंग भरियो मुस्कात लला निकसियो कल कुंजन ते सुखदाई मैं तब ही निकसी घर ते तक नैन विशाल की चोट चलाई घूम गिरी रस खान तब हरिनी जिमि जान ललजय गिर नाई टूट गयो घर को सब बंधन टूट गयो आरज लाज बढ़ाई। उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि रसखान व्यवहार तो कृष्ण के सगुण स्वरूप के ही चाहते थे किंतु सगुण के निर्गुण निराकार रूप को मान्यता भी वे बराबर देते रहे। यही कारण है कि उनके अलौकिकत्व की ओर उनकी दृष्टि बराबर रही है। उनके कृष्ण परम ब्रह्म हैं वे चतुरानन शिव सभी महेश्वरों के वंदित महाप्रभु हैं फिर भी गुरुपियों के संकेत पर नाचते हैं। जैसे शंकर से सुर जाहि जपय चतुरानन ध्यान धर्म बढ़ावय शेष गणेश महेश दिनेश सरेशहु जाहि निरंतर गावय जाहि अनादि अनंत अखंड अभेद अछेद सुवेद बतावय ताहि अहिर की छोहरियाँ छछिया भरी छाँझ पर नाच नचावय।